हरे कृष्ण। तो जैसे मैं कह रहा था कि आज विशेष तिथि है, आज श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, और जो है वो आज हम जो कक्षा लेंगे उनकी जीवनी के ऊपर लेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर आप जैसे जानते भी हैं और हम सुनेंगे भी और आपने पढ़ा भी होगा कि वो कोई साधारण जीव तो नहीं है, भगवान के परिकर हैं, भगवान के पार्षद हैं। तो जब मैं सोच रहा था कि मुझे सेवा मिली कि आज नरोत्तम दास ठाकुर की जीवनी के ऊपर कुछ बोलना है, तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि मैं कैसे उनका गुणगान कर पाऊँगा, क्योंकि जैसे इंग्लिश में एक कहावत है या एक कहना है कि टेक्स वन टू नो वन, है ना। तो कोई भगवान के नित्य परिकर को नित्य परिकर ही समझ सकता है, तभी नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर हम पढ़ते हैं भगवान के ही पार्षदों के द्वारा। जैसे एक ग्रंथ है नरोत्तम विलास, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में वर्णन है, वो भी किसने लिखा है? नरहरि चक्रवर्ती ने लिखा है, वो भी भगवान के पार्षद। लेकिन एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कि उनके महान चरित्र से कुछ चर्चा करके हम शुद्धिकरण कर सकें। जैसे एक वैष्णवदास करके एक भक्त है, उन्होंने जो है एक गीत में ऐसा लिखा है कि वैष्णवेरा गुणगान करले जीवरे तरान सुनिए अच्छे साधु गुरु मुखे, कि मैंने साधुओं और गुरुओं के मुख से सुना है कि जब वैष्णव का हम गुणगान करते हैं तो क्या होता है, करले जीवरे तरान, तो जीव शुद्ध हो जाता है, उस तर जाता है से वैष्णव का गुणगान करने से। और नरोत्तम दास ठाकुर अपने एक भजन में लिखते हैं, गौरंगरा द्वितीय पदा भजन में लिखते हैं कि गौरांगेरा भक्तगण गौरांगेरा संगी गना नित्य सिद्ध कोरी माना से जय ब्रजेंद्र सिद्ध पास, कि जो ये मानता है कि जो चैतन्य महाप्रभु की संगी गण है वो नित्य सिद्ध है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति योग्य बन सकता है भगवान के पास जाने का, ब्रजेंद्र सुते पास भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का योग्य बन सकता है। कि हम अगर चैतन्य महाप्रभु की संगी गणों का गुणगान करें, समझें उनकी महिमा को, तो हम भगवान की कृपा को बड़ी जल्दी आकर्षित कर सकते हैं। तो बस उसी से प्रेरणा लेते हुए मैंने आज कुछ प्रयास करूँगा कि नरोत्तम दास ठाकुर के कुछ गुणगान कर सकूँ, उनके जीवनी से कुछ चर्चा कर सकूँ। मुझे प्रभुपाद जी का भी एक कोट मिला जो भागवतम का 10वें स्कंद का जो पहला अध्याय है, तो उसमें बिल्कुल आखिरी श्लोक में कुछ एडिशनल नोट्स हैं, तो उसमें श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का क्या मतलब होता है आप तो जानते हैं, भगवान का गुणगान ऊंचे से ऊंचे श्लोकों में होता है, अच्छे से अच्छे श्लोकों में होता है। लेकिन प्रभुपाद जी थोड़ा सा उत्तर एक अलग सा भी इसमें उसका अनुवाद लिखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं उत्तम श्लोक मीन्स वन हुज फेमस एज द बेस्ट ऑफ दोज हु आर गुड, जो अच्छे लोगों में से सर्वोत्तम है और उसमें सबसे विख्यात जो है वो भगवान है। द लॉर्ड इज गुड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, भगवान तो हर स्थिति में अच्छे रहते हैं। दैट इज अ नेचुरल रेपुटेशन, भगवान की ये स्वतः ही ख्याति है कि हमेशा ही सर्वोत्तम रहते हैं, नरोत्तम रहते हैं। हिज गुडनेस इज अनलिमिटेड, और उनकी जो महिमा है वो अपरंपार है, असीमित है। लेकिन प्रभुपाद जी अब लिखते हैं कि अ डिवोटी इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड उत्तम श्लोक, एक भक्त को भी उत्तम श्लोक कहा जाता है। इसका उत्तम श्लोक का क्या अर्थ बताया था प्रभुपाद ने कि वन हु इज द बेस्ट ऑफ दोज हु आर गुड, जो अच्छे लोगों में सबसे अच्छा है, मतलब जो नर में सबसे उत्तम है वो कौन है? नरोत्तम। तो नरोत्तम भगवान का भी नाम है और नरोत्तम भक्त का भी एक नाम। सो डिवोट इज ऑल्सो समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज उत्तम श्लोक, मीनिंग दैट इज ईगर टू ग्लोरीफाई द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड और द लॉर्ड्स डिवोटीज। भक्त को उत्तम श्लोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उत्तम श्लोक का भगवान का हमेशा गुणगान करना चाहते हैं और भगवान के भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड एंड ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड्स डिवोटीज आर द सेम, भगवान की महिमा तो असीमित है, तो उन भगवान की महिमा को गाना और भक्तों की महिमा को गाना प्रभुपाद जी कहते एक समान। भगवान के भक्त भगवान जितने महान हैं, भगवान के भक्त भी उतने महान, ऑफकोर्स भगवान की कृपा से ही। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं एंड रादर glorifying the devotee is even more important than glorifying the Lord directly. जब हम किसी वैष्णव का गुणगान करते हैं तो भगवान के गुणगान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है. नरोत्तम दास ठाकुर एक्सप्लेन्स दिस फैक्ट. प्रभुपाद जी उनको कोट कर रहे हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निष्ठा पाई चुके, कि अगर हम किसी वैष्णव का गुणगान ना कर पाए, सेवा ना कर पाए, तो हम जो है वो निष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते या अपना उद्धार नहीं कर सकते. तो भगवान के गुणगान के साथ साथ वैष्णव का गुणगान करना जो है भगवान के गुणगान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है. तो इसलिए जो है ऐसे अच्छा ऐसे तिथि वाले दिन भागवत कथा की जगह जो है हम जो ग्रंथ भागवत की जगह जो व्यक्ति भागवत है उनकी चर्चा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं. तो आज जो है नरोत्तम दास ठाकुर करीबन 484 ईयर्स बिफोर जो है उनका प्राकट्य हुआ. कौन सी जगह में उनका प्राकट्य हुआ कोई जानते हैं? खेतरी ग्राम में उनका प्राकट्य हुआ. एक बारी नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं इस गौड़े वैष्णव संप्रदाय को. उसमें से जो प्रमुख उनके योगदान रहे हैं, सबसे पहले तो है उनके बहुत सुंदर उनका लिटरेरी वर्क जो उन्होंने रचना की. दो प्रमुख किताबों की रचना की, कौन कौन सी? एक प्रार्थना और एक प्रेम भक्ति चंद्रिका. आप लोगों ने सुना होगा एक बारी एक व्यक्ति गौर किशोरदास बाबू जी महाराज के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, बाबू जी महाराज आप इतने उन्नत वैष्णव हैं, महापुरुष, आप बताएं कि कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति बहुत सरलता से कैसे कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? तो गौर किशोर बाबू जी ने कहा चार आने से. तो उसको लगा नहीं, चार आने से कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है, इतना सस्ता कैसे बन सकता है? तो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चार आने का क्या मतलब है कि दो आने की एक किताब खरीदना, कौन सी? प्रार्थना, और दो आने की प्रेम भक्ति चंद्रिका, और इसको पढ़ना, इसको इस पर विचार करना, इसको अपने जीवन में अमल करना, इसे करने मात्र से आप क्या कर लोगे, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं. तो ऐसे महत्वपूर्ण का उनका वर्क था नरोत्तम दास ठाकुर. प्रभुपाद जी भी कहते थे कि जितने भी वैदिक राइटिंग्स हैं, जितने भी वैदिक लिटरेचर है, उसमें जो भी निष्कर्ष हैं वो हम नरोत्तम दास ठाकुर की गीतों में प्राप्त कर सकते हैं. और लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि जो वैदिक शास्त्र है वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत में. तो कितने लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं आज के समाज में? बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं. लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर गीत हैं किसमें लिखे हैं? सरल बंगला भाषा, वो पढ़ना समझना और भी आसान है, क्योंकि बंगला और हिंदी मेल भी खाती है. तो बंगला में हमको गीत पढ़ते हैं तो उसको समझना और भी आसान. तो उन्होंने और आसान कर दिया वही सिद्धांत को समझने के लिए जो कि वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष है. तो प्रभुपाद जी कहते थे इसलिए उनके ये जो गीत हैं वो वैदिक शास्त्रों से अभिन्न है. और प्रभुपाद जी से एक बारी यमुना माता जी ने पूछा कि आपका सबसे प्रसिद्ध आपका सबसे प्रिय वैष्णव भजन कौन सा है? तो प्रभुपाद जी ने कौन सा वैष्णव भजन बताया? हरि हरि विफले जन्म गुनाहिं. और वो किसने लिखा है? ठाकुर के भजन प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय थे, रक्षण को गाया करते थे. तो एक तो उनका था राइटिंग, उनका वर्क. दूसरा नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था वो था कास्टिज्म को ब्रेक करना, जातिवाद को. आगे जाके हम सुनेंगे मौका लगेगा तो जातिवाद को खत्म करना वो उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वो उनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ. कायस्थ शूद्र की कैटेगरी मानी जाती है, लेकिन वो किनके गुरु बने? कई ब्राह्मणों के गुरु बने. तो ये बहुत बड़ा एक जो है वो विवाद था समाज कि कैसे शूद्र ब्राह्मण को दीक्षा दे सकता है. तो इस बात का उन्होंने खंडन किया, वो हम आगे जाकर देखेंगे. तीसरा उनका बहुत बड़ा योगदान था वो था गौर पूर्णिमा उत्सव जो उन्होंने पहली बार किया अपने जन्म स्थान खेतरी ग्राम. तो उसके बाद कुछ संक्षिप्त में सुनेंगे. और इस तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर ने हमारे संप्रदाय में एक कुछ ऐसे विशेष योगदान दिए. तो जैसे मैं कह रहा था कि गौरंगा संगी गना नित्य सिद्ध कोरी मन जे से जाए ब्रजेंद्र सुते पास. तो चित्र महाप्रभु के नित्य संगी थे और उनके जीवनी में हम देखते भी आप सब जानते हैं कि उनके आने से पहले चैतन्य महाप्रभु घोषित कर चुके थे कि नरोत्तम आने वाले हैं। जब चैतन्य महाप्रभु से पुरी से वृंदावन गए तो वहाँ पर उनको मिले रूप और सनातन को, कौन से स्थान पर? राम के लिए, श्री राधा राधे करमन भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माने की, श्री गौण निधाय की, जगत गुरु प्रभुपाद की। तो नरोत्तम ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो मैं एक चीज़ रह गई, एक और महत्वपूर्ण नरोत्तम ठाकुर योगदान था हमारे संप्रदाय में, वो ये था कि भक्ति चारू महाराज एक बार बता रहे थे कि प्रीडिसेसर इज नोन बाय द सक्सेसर इन स्पिरिचुअल सर्कल्स। आध्यात्मिक समाज में गुरु की पहचान होती है कभी कभी शिष्यों की पहचान करके, शिष्यों से जो है गुरु की महिमा के बारे में पता चलता है। जैसे चैतन्य
महाप्रभु जा रहे हैं नदी में, हो सकता है शायद किसी और को ही मिल सके तो उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु का ये जो योजना थी ये सब भक्तों को बताया, और सब भक्त लोग मिलकर बहुत उत्साहपूर्वक अगले दिन पद्मा नदी में गए और वहाँ पर खूब कीर्तन हुआ। और चैतन्य और महाप्रभु ने जब स्नान किया तो क्या हुआ कि उस पद्मा नदी में जो है वो जो है उसका स्तर बहुत बढ़ने लगा, उसके जो वेव्स थे बहुत ऊंचे जाने लगे, और फिर पद्मा नदी जो स्वयं मूर्तिमान रूप से महाप्रभु के सामने प्रकट हुई। और जो है वो उन्होंने पूछा कि मैं समझ रही हूँ कि आप जो है अपना प्रेम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, लेकिन किस शख्स के लिए छोड़ रहे हैं, मुझे कैसे उनको देना है? तो महाप्रभु उनको बताते हैं कि मेरे यहाँ पर भक्त आएंगे, उनका नाम है नरोत्तम, और जब वो स्नान करेंगे तो तुम ये प्रेम उनको दे देना। तो पद्मा नदी जो आई थी उन्होंने पूछा मैं कैसे पहचानूंगी कि नरोत्तम वो भक्त कौन है? तो महाप्रभु ने बहुत सिंपल सा बताया, कुछ नहीं होगा, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, जैसे वो आपकी नदी में स्नान करेंगे नदी में उछाल आ जाएगा। तो जब ऐसा हो जाए तो समझ जाना कि यही भक्त नरोत्तम है तो उनको मेरा प्रेम दे देना। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में पहले ही बता दिया। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म जो है कुछ सालों के बाद जब महाप्रभु अप्रकट्य हो रहे थे, उसी साल के आसपास नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य हुआ खेतरी ग्राम में। और बचपन से ही वो दिखा रहे थे कि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। जब उनका प्राकट्य हुआ उनका पिता का नाम कृष्णानंद दत्त था और माता का नारायणी देवी था। बहुत दिलचस्प चीज़, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक बात ये पता चली कि भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह ये लिखते हैं कि जो नरोत्तम दत्त थे पहले, और भक्ति विनोद ठाकुर का क्या नाम था? केदारनाथ दत्त। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वास्तव रूप में मैं नरोत्तम दत्त की उस वंशाली में आ रहा हूँ मैं उस पीढ़ी में आ रहा हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। तो उनका नाम नरोत्तम दत्त था, पिता का नाम कृष्णानंद था, माता का नाम नारायणी देवी था। और जब वो उनका उनका जन्म हुआ तो कुछ बच्चा जब 6 महीने का होता है तो अन्नप्रसन्न करके एक संस्कार होता है। तो जैसे हम वैष्णव के जीवन में देखते हैं कि उस बच्चे के सामने जब अन्न रखा तो कुछ खाने को तैयार नहीं था। तो कोई एक वैष्णव जो है वो उसने देखा बच्चा खा तो नहीं रहा, तो लेकिन कोई एक वैष्णव उस समाज के बीच में आ गया उनके बीच में, और उसने उसके हाथ में प्रसाद था तो वो उसको अर्पित किया उस छोटे से बच्चे को। तो बच्चा जो है जो पहले अनाज नहीं खा रहा था, खाना नहीं खा रहा था, लेकिन प्रसाद के रूप में ये पूरा उस भक्त के हाथ से उसने खा लिया। तो ये देखकर उसके माँ बाप को समझ में आया कि वो क्यों अन्न नहीं खा रहा था। तो उस बच्चे को कहीं ना कहीं आभास था कि ये अर्पित नहीं है और ये प्रसाद है। तो उसने जो है उस बच्चे ने प्रसाद रूप में जो है वो पूरा अन्न खा लिया। और फिर जैसे वो बालक बड़ा हुआ तो बहुत मेधावी भी था, बहुत सुंदर भी था। तो पास में एक ब्राह्मण रहते थे खेतरी ग्राम, उनका नाम कृष्णदास था। तो चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं का वर्णन करते थे, उनकी कथा करते थे। तो छोटा सा बालक की बहुत रुचि होती थी कि मैं उनकी कथा को सुनने जाऊं, मैं महाप्रभु के बारे में सुनने के लिए जाऊं। तो उनका स्वतः ही बचपन से उनका आकर्षण था महाप्रभु के लिए, और वो वहां जाकर महाप्रभु के बारे में सुनते थे, और जो है उनको वहां पर खूब खुशी मिलती थी, अच्छा लगता था वहां पर बैठ के। और उनका इस कथा को सुनते सुनते उनका महाप्रभु से आकर्षण पैदा हो गया, और जो है वो ऐसे करते करते वो बड़े हुए। ऐसा बताया जाता है करीबन जब वो नरोत्तम ठाकुर 12 साल के थे तो नित्यानंद प्रभु उनके सपने में आए, और नित्यानंद प्रभु ने उनको अब कहा कि आपका समय क्या हो गया है, क्या करने के लिए? पद्मा नदी में स्नान करने के लिए। तो अब वो घटना घटने वाली थी कि जो है वो उस पद्मा नदी में जो है उनको स्नान करने जाना था। तो जैसे उनको जब नित्यानंद प्रभु का सपने में आए नरोत्तमदास ठाकुर जो है वो पद्मा नदी की तरफ गए और वहाँ पर उन्होंने जब स्नान किया, और जब उन्होंने स्नान किया तो क्या हुआ, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि उस नदी का जो है वो पानी बहुत बढ़ने लगा, और फिर जो है वो नरोत्तम दास ठाकुर ने, उस छोटे से बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने देखा चैतन्य महाप्रभु को साक्षात, और चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर का जोर से आलिंगन किया, और नरोत्तम दास ठाकुर को लगा कि महाप्रभु मेरे शरीर का आलिंगन नहीं कर रहे, मेरे आत्मा का आलिंगन कर रहे हैं। और इस आलिंगन करके क्या हुआ कि उनको ऐसा लगा कि चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में प्रविष्ट हो गए, कि हृदय में चले गए आलिंगन करके। और फिर जो नरोत्तम दास ठाकुर जो है सांवले रंग के थे, तो उनका रंग बदल गया और वो गोरे रंग के हो गए, और जब वो पानी से बाहर निकले तो अब उनको लगा उनके जो है वो महाप्रभु के विरह में, महाप्रभु के प्रेम में जो है वो उस विरह के भाव में जोर से कीर्तन करने लगे, और महाप्रभु को बहुत तीव्रता से याद करने लगे, और जो है बहुत प्रेम पूर्वक नाचते हुए कीर्तन हुए, एक अलग रूप में, अलग अलग रंग में जो है उस नदी के किनारे पे कोने खट्टे जोर जोर से कूदते हुए नाचते हुए कीर्तन करने लगे। लेकिन बहुत समय हो गया उनके घर पे, वो वापस पहुंचे नहीं, तो उनके माता पिता को चिंता होने लगी कि अभी तक जो है वो नरू नहीं आया, उनका एक बचपन का नाम नरू था, तो नरू अभी तक वापस नहीं आया। तो उन्होंने भेजा, तो उनके नौकरों को वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, उनको लगा सिर्फ एक पागल नाच कूद रहा है और तो कोई है नहीं, क्योंकि नरू जो है वो सांवले रंग का था, और लेकिन ये कोई गोरा कोई पागल व्यक्ति था जो कि नाच कूद रहा था। तो देखकर वापस आ गए, फिर माता पिता गए उनको ढूंढने के लिए, तो पहचाना कि नहीं ये जो है वो नरू ही हमारा। तो उसको नरोत्तम दास ठाकुर को लेके वापस घर पे आए, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर बिल्कुल महाप्रभु की याद में, महाप्रभु के प्रेम में निरंतर कीर्तन कर रहे थे और रो रहे थे। उनकी माता को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो रो क्यों रहे, तो उन्हें पूछा, ऐसा लिखा है उन्होंने पूछा कि उन्होंने नरोत्तम से पूछा कि तुम्हारी मैं कैसे मदद कर सकती हूँ, तुम क्यों इतना रो रहे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, कि आज मैं पद्मा नदी में गया था और मुझे वहाँ पर भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ, और उन्होंने मेरा आलिंगन किया और मुझे ऐसा आभास हुआ कि जो है वो मेरे हृदय में आ गए, तो अब मैं उनके प्रेम से, उनके विरह से जो है मैं उनसे अब दूर नहीं रहना चाहता हूँ, तो आप मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं घर छोड़ के उनके पास चले जाऊँ। तो अब ये माता पिता के लिए तो बहुत मुश्किल था ये सुनना। लेकिन उनके पिताजी को ये लग गया कि जो है नरोत्तम जो है वो जो है अब ज़्यादा दिन घर पर नहीं रहेगा, जैसे हम रघुनाथ दास गोस्वामी के भी लीला में सुनते हैं कि वो भी जो है मौका ढूंढते थे घर से भागने का, महाप्रभु के पास जाने का। तो उनको लगने लगा जो है ये अब गड़बड़ होने वाली है, नरोत्तम दास ठाकुर अब जो है अब छोटा सा बच्चा है, इसकी मैं जल्दी से शादी करा देता हूँ, अगर शादी हो जाएगी तो बस बाकी काम पत्नी का संभालना है, पत्नी जो है उसको जो है उसको फसला के रखेगी, उसको मोह में रखेगी, घर में उसको कुछ ना कुछ तरकीब वो अपनाएगी। तो उसकी जो है वो शादी करने के बारे में सोचने लगे, लेकिन लगने लगा कि बीमारी काफ़ी ज़्यादा है, पहले कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो उन्हें एक ओझे को बुलाया जो कि भूत प्रेत को भगाते हैं, तो ओझे को बुलाया, तो ओझा आया तो उसने देखा वास्तव में बीमारी बड़ी गंभीर है, ऐसा केस तो मैंने भी पहली बार देखा है। ये तो भगवान का नाम ले रहा है और कूद रहा है, नाच रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। तो उसने कहा ठीक है दिखाने के लिए, तो बोलने लगा कि ये तो मैं इसका इलाज कर लूँगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो वास्तव रूप में कुछ जो है वात का रोग हो गया, वात के रोग सर पे चढ़ गया, और उसके कारण जो है थोड़े पागलपन के ये कुछ लक्षण हैं, लेकिन ये शांत हो जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक विशेष तेल मंगवाना पड़ेगा और लोमड़ी का मीट जो है उसको पका के खिलाना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा, ये उपाय दिया। तो नरोत्तम दास ठाकुर को जब ये पता चला कि लोमड़ी का मीट मुझे बनाया जा रहा है मुझे खिलाने के लिए, तो बड़े दुखी हुए, उन्होंने कहा मुझे कोई भूत सवार नहीं है, ये भक्ति के लक्षण है। तो को ये जो है वो प्रेम के लक्षण है, भक्ति के लक्षण है, कोई भूत सवार होने के लक्षण नहीं है। लेकिन अब निश्चित हो गया था उनको कि मुझे अब घर पे ज़्यादा दिन नहीं रहना है, अब पता नहीं अगला कदम वो क्या लेंगे। तो अब दिन रात जो है वो महाप्रभु को याद करने लगे, महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे कि मुझे आप ऐसा कुछ कृपा कीजिए मेरे ऊपर कि मैं जल्दी से आपके शरण में आ सकूं। और कुछ ही दिनों में महाप्रभु उनके सपने में आते हैं और महाप्रभु भी बहुत दिलचस्प बात बोलते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम ही मुझे याद कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे वियोग में विरह में बहुत पीड़ा सह रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ। तो तुम काम करो, अब मेरी आज्ञा है तुम्हारे पास, और तुम क्या करो जल्दी से जो है मौका ढूंढो और वृंदावन आ जाओ, और वहाँ पर ही मेरे एक भक्त है लोकनाथ, उनसे तुम दीक्षा ले लो। तो नरोत्तम दास ठाकुर को अब आज्ञा मिल गई, अब उनको बस मौका ढूंढना था, भगवान की आज्ञा मिल गई, अब और क्या चाहिए था, तो मौका ढूंढने लगे। लेकिन इस समय में ऐसे जैसे समय बीत गया, पूरे गांव में ये बात फैल गई कि ये जो बच्चा है कृष्ण नारायणी देवी के घर पे, ये कोई साधारण बालक नहीं, एक विशेष व्यक्ति है। तो उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई, यहाँ तक ख्याति बढ़ गई कि जो मुसलमान थे वो भी नरोत्तम दास ठाकुर को आदर देते थे। तो वहाँ पर एक मुसलमान गवर्नर था, उसकी इच्छा हुई कि मैं इस बालक से मिलूँ, उसको लगने लगा कि ये संत तो है, शायद कोई पीर भी होगा तो मैं इससे कोई आशीर्वाद प्राप्त करूँ। तो उन्होंने जो है संदेशा भेजा कृष्णानंद के पास कि आपका जो बेटा है नरोत्तम, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तो कृष्णानंद को लगा कि ये तो गड़बड़ का समय, गड़बड़ हो जाएगी, उनको शक होने लगा कि गलती से मैंने अगर भेज दिया नरोत्तम को तो मुझे पूरा अंदाजा है कि वो वापस नहीं आएगा घर, तो ये तो बड़ी खतरे वाली बात है। तो उनको लगने लगा मैं ही चले जाता हूँ उनसे मिलने के लिए। लेकिन वो जो मुसलमान गवर्नर था वो कृष्णानंद जी से तो मिलना नहीं चाहता था, वो तो उनके बेटे से मिलना चाहता था। तो अब क्या उपाय किया जाए, तो उन्हें बहुत सारे गार्ड्स सैनिक को साथ में अपने बेटे के साथ रखकर भेजा कि और समझा के भेजा, कुछ भी हो जाए ये लड़का मेरा वापस आना चाहिए। तो बड़े सतर्क थे गार्ड, और उनके बीच में नरोत्तम दास ठाकुर को रखकर वो उस मुसलमान से मिलने के लिए गए। लेकिन बस नरोत्तम दास ठाकुर को इसी घड़ी की इंतजार थी, वो मौका ही ढूंढ रहे थे कि कब मैं महाप्रभु के पास जा सकूं। और जैसे ही उन गार्ड्स का ध्यान इधर उधर हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर ने मौका ढूंढा और चुपके से वहां से भागे। जैसे ही वो भागे, उनको पता तो था मुझे वृंदावन जाना है, तो बिना रुके और बिना सोचे समझे सीधा वृंदावन की तरफ भागे। अब जैसे ही वो भाग पड़े, जो गार्ड थे उनके लिए तो स्ट्रिक्ट वार्निंग थी कि नरोत्तम को वापस लाना था और उनके बिना उनको वापस नहीं जाना था, तो वो भी वापस ना जाकर उनको ढूंढने में चले गए। लेकिन जैसी खबर वापस पहुंची तो कई तो ढूंढने के लिए गए नवद्वीप में, क्योंकि उनको लगा नवद्वीप शायद पास में, तो वो महाप्रभु को मिलने के लिए नवद्वीप तो नहीं गया, तो कहीं नवद्वीप चले गए, कहीं पूरी चले गए ढूंढने के लिए, और कुछ जो है उनको लगा शायद वृंदावन भी गया होगा, वृंदावन भी चले गए। नरोत्तम दास ठाकुर भागते गए भागते गए भागते गए, और उनकी आशा और प्रगाढ़ होती रही कि मैं वहाँ जाकर जो है मैं महाप्रभु और उनके जो पार्षद हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जिनके बारे में उन्होंने सुना था, उनसे मेरी भेंट होंगी, उनसे मैं मिलूंगा। और भागते भागते उनकी तरफ जा रहे थे। तो रास्ते रास्ते में वो 3 दिनों तक भागते रहे भागते रहे भागते रहे, इतने थक गए कि जो है वो बिल्कुल जो है वो बेहोशी की हालत में आ गए और थक कर लेट गए। तो तब क्या होता है कि महाप्रभु एक ब्राह्मण के रूप में आ जाते हैं और उनको दूध देते हैं, लेकिन उतने थके होते हैं तो देख ही नहीं पाते कि वो ब्राह्मण कौन थे, वो दूध लेकर रखते और फिर सो जाते हैं, उनकी थकावट होती है। लेकिन फिर दोबारा उनके सपने में रूप सनातन गोस्वामी आते हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आते हैं, और उनको बोलते हैं कि जो ब्राह्मण आए थे कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, स्वयं महाप्रभु थे, तो आप एक काम करो, वो दूध जो उन्होंने दिया वो दूध का आप सेवन करो तो आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी वृंदावन जाने के लिए। तो उठते हैं, दूध पीते हैं और फिर से भागने लगते हैं। भागते भागते वो मथुरा पहुंचते हैं विश्राम घाट में, और विश्राम घाट में उनको क्या पता चलता है कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, अक्सर पार्षदों में हम देखते हैं, श्रीनिवास आचार्य के जीवन में भी देखते हैं कि जैसे वो मथुरा पहुंचते तो पता चलते हैं कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी काशीश्वर पंडित वो नहीं रहे। तो नरोत्तम दास ठाकुर खूब क्रंदन करते हैं और अपने आप को धुतकारते हैं कि मैं जिनसे मिलने के लिए आ रहा था, जिनसे मैं सीखने के लिए आ रहा था, जिनके दर्शन करने के लिए आ रहा था, इनका संग प्राप्त करने के लिए आ रहा था, वो इस धराधाम में नहीं रहे। तो बहुत क्रंदन करते हैं, बहुत रोते हैं, लेकिन तभी उनको सपने में जो है वो रूप सनातन गोस्वामी सब पार्षद आते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। वो कहते हैं कि आप वृंदावन में जाके जीव गोस्वामी के पास जाइए और उनसे जाकर आपको वही शिक्षा मिलेगी जो हमसे प्राप्त करते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर, उनको सांत्वना प्राप्त होती है तो वो वृंदावन पहुँचते हैं। जब वृंदावन पहुँचते हैं तो सबसे पहले कहाँ गए होंगे वो, क्या लगता है आप लोगों को? गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ऐसा लिखा है कि जब गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मंदिर को देखकर उनके अंदर अश सात्विक विकार आ जाते हैं, सिर्फ मंदिर का दर्शन करके। अभी तक अंदर विग्रहों के भी दर्शन नहीं किए थे, मंदिर की सुंदरता को देखकर और उस मंदिर से रूप गोस्वामी का स्मरण होकर वो वहीं पर ही लोटपोट होने लगते हैं और खूब कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। जब वहाँ के भक्त लोग जब उनको देखते हैं कि कैसा कोई वैष्णव आया है और खूब कीर्तन कर रहा है, खूब भाव वेश में, तो एक खबर फैलती है और एक खबर जीव गोस्वामी तक पहुँचती है। जीव गोस्वामी उनसे मिलने के लिए आते हैं। जीव गोस्वामी भी देखकर पहचान जाते हैं कि ये नरोत्तम ही है, क्योंकि जीव गोस्वामी के पिछले रात के सपने में रूप और सनातन गोस्वामी उनके सपने में भी आते हैं। उनको बोलते हैं अगले दिन नरोत्तम आ रहा है, तुम जाके उनसे भेंट करना। तो वो ऐसे डिवाइन अरेंजमेंट्स होते हैं उनके जीवन में। और फिर जो है वो जीव गोस्वामी से भेंट करते हैं और उसी समय वो भेंट करते हैं लोकनाथ गोस्वामी से। और उनको क्या याद आता है लोकनाथ गोस्वामी को देखकर? कि उनके महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था कि वृंदावन जाकर क्या करना, लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी का एक व्रत था। क्या व्रत था? कि वो किसी शिष्य स्वीकार नहीं करें, किसी को दीक्षा नहीं दें, क्योंकि वो कोई भी प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे, पूजा नहीं चाहते थे। तो उन्हें तय किया हुआ था मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा, किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। और यहाँ पर महाप्रभु का आदेश था कि उनको दीक्षा लेना है। तो अब हम देखेंगे, आपने सुना भी होगा कि नरोत्तम दास ठाकुर कैसे लोकनाथ दास गोस्वामी की सेवा करके, उनको पसंद करके, उनकी कृपा का आकर्षित करके उनसे वो दीक्षा लेते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जाते हैं लोकनाथ गोस्वामी के, उनका भेंट होती है। तो जाते ही सबसे पहले रखते हैं, क्या कहते हैं कि महाप्रभु ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करूं। तो लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं अरे आपको गुरु की क्या आवश्यकता है? उनको पता तो था ही नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में, चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही बोल दिया था। तो उन्होंने कहा आपके तो, आपको तो स्वयं भगवान आपके हृदय में है, आपके भगवान से बड़ा गुरु कौन हो सकता है? चैतन्य महाप्रभु ही आपके गुरु हैं, तो आपको एक और गुरु की आवश्यकता क्यों है? तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि आपकी बात सत्य है, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक जीवन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर एक को गुरु की आवश्यकता है, और अगर आप मेरा मार्गदर्शन नहीं देंगे तो मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हालांकि हम उनके जीवन में देखें कि वास्तव रूप में दो नरोत्तम दास ठाकुर भगवान को प्राप्ति कर चुके थे। जो कृष्ण प्रेम एक साधक का लक्ष्य है कि उसको भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना है, वो ऑलरेडी प्राप्त कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आतुर थे, और इसलिए वो लोकनाथ गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी उनको टाल देते हैं और कहते हैं कि देखो दीक्षा देने के नियम होते हैं, कम से कम एक साल का माला का जाप करना पड़ेगा, आपको चार नियमों का पालन करना पड़ेगा, फिर एक साल बाद सोचेंगे, एक बात करके टाल देते हैं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के लिए चार नियम और जब कोई बड़ी बात तो थी नहीं, वो पहले ही सही करते थे। तो बड़ी जल्दी जो है एक साल बीत गया। उस एक साल में वो लोकनाथ गोस्वामी जब भी कथा करते थे, उनकी कथा में वो उनका श्रवण करते थे, उनकी सेवा ढूंढते थे, किसी न किसी तरीके से उनका जो है वो कुछ सेवा कर पाए, उनका वो एक ही मात्र लोकनाथ गोस्वामी का उच्चिष्ट ही खाते थे। लेकिन एक साल बीत गया, एक साल बीतने के बाद फिर भी जब दोबारा नरोत्तम दास ठाकुर गए लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त करने के लिए, तो फिर उन्होंने क्या देखा कि फिर लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि जो है वो उन्होंने उनकी बात स्वीकार नहीं की, और उन्होंने कहा कि जो है मैं फिर निर्णय करके तुम्हें बताऊँ। लेकिन एक साल बाद के बाद जब नरोत्तम दास ठाकुर ने देखा कि लोकनाथ गोस्वामी उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हालांकि महाप्रभु जो है वो चाहते थे, तो अब उन्होंने क्या सोचा कि वास्तव रूप में मैं अपने गुरु की कोई विनम्र सेवा करके ही उनको संतुष्ट कर सकता हूँ, और जब वो कभी संतुष्ट हो जाएंगे तब शायद उनके मन में आ जाए मुझे स्वीकार करने के लिए। तो उन्हें क्या सेवा स्वीकार की कि जो सबसे एक विनम्र और तुच्छ सेवा हो सकती है गुरु की, गुरु का जो मल है वो साफ करने का उन्होंने निर्णय लिया। किसने उनको बोला तो था नहीं, लेकिन हम अपने गुरु की विनम्र सेवा करना चाहते थे। तो जब लोकनाथ गोस्वामी जाते थे मल त्यागने के लिए, तो नरोत्तम दास ठाकुर छुप कर जो है वो उस स्थान को साफ करते थे, और फिर जो है उस स्थान को साफ करके वहाँ पर ताज़ा पानी और लोटा रखते थे कि जब अगले दिन आएंगे तो उनको कोई असुविधा नहीं होगी। तो लोकनाथ गोस्वामी ने जब दोबारा आकर देखा उस स्थान को कि वो बिल्कुल स्वच्छ है और यहाँ पर जो है पानी भी रखा है, सब सुविधा रखी है, नीट एंड क्लीन है, तो उनको शक होने लगा। ऐसे जब कई दिन होने लगा तो आप सब जानते हैं कि जो है उनको शक हुआ, और फिर उन्हें छुप कर देखा कि वो नरोत्तम है। लेकिन तब भी जो है उन्होंने उनको दीक्षा देने के लिए उनको उन्हें स्वीकार नहीं किया। नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो बहुत जो है वो पीड़ित हो गए और महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे। आखिरी में महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी के सपने में आए, उन्होंने लोकनाथ को कहा, जब लोकनाथ गोस्वामी एक्चुअली वृंदावन गए थे तभी महाप्रभु ने उनको कहा था कि आप वृंदावन में रहना, मेरे लीला शैलियों को देखना, और मेरे एक भक्त आएंगे नरोत्तम, उनको दीक्षा देना। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर, जब लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा नहीं दे रहे होते, चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आते हैं और उनको बोलते हैं, मैं तुम्हें कहा था कि तुम नरोत्तम को दीक्षा दो, तुम क्यों नहीं दीक्षा दे रहे हो, ये झूठी विनम्रता को छोड़ो। फिर महाप्रभु के आदेश के बाद उनके दोबारा जब उनके सपने में वो आए, तब आखिरी में लोकनाथ गोस्वामी जो है वो फिर भी निर्णय कर रहे होते हैं। जब नरोत्तम दास ठाकुर अगले दिन जाते हैं प्रार्थना करके, उनको कहते हैं कि जैसे एक लड़की है वो अपने पति को चुन लेती है, जिससे वो प्रेमी होता है, प्रेमी को चुन लेती है, अब वो प्रेमी को उसने चुन लिया है तो उसे भगवान से प्रार्थना कर सकती है कि उसके माता पिता उससे मान जाए और उसका विवाह उससे करा दे। तो उसने कहा उसी तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मैंने आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है, अब मेरे भगवान से यही प्रार्थना है कि किसी ना किसी तरीके से वो स्वीकार कर लें और आपके हृदय में जो प्रेरित करें कि आप भी स्वीकार कर लें। जब इतनी सारी घटनाओं के बाद और महाप्रभु जब आखिरी में उनके सपने में आते हैं, तब लोकनाथ गोस्वामी निर्णय लेते हैं कि मैं नरोत्तम दास ठाकुर को आखिरी में एक दीक्षा दूंगा, लेकिन दूसरा निर्णय ये लेते हैं कि ये एकमात्र मेरा शिष्य होगा, किसी और को दीक्षा नहीं दूंगा, और फिर उनको अपना शिष्य बनाते हैं और एक ही बारी में उनको हरिनाम दीक्षा और गायत्री दीक्षा दोनों दे देते हैं, उनका स्वरूप भी उनको बता देते हैं, और उनको एक ही बारी में सब कुछ ख़त्म करके उनको सब कुछ रिवील करके उनको बोल देते हैं, ठीक है अब आप क्या करो कि अब आगे की जो भी शिक्षा है उसके बाद भी कोई शिक्षा होगी सब कुछ जानने के बाद भी आगे की जो भी शिक्षा आप जीव गोस्वामी से सीख लें, तो उनके पास जीव गोस्वामी का भेज देते हैं। तो उनका सिद्ध देकर, उनका स्वरूप बताकर, उनको गायत्री मंत्र देकर, हरिनाम देकर, सब कुछ सबको एक ही बारी में कंप्लीट करके उनको जीव गोस्वामी के पास भेज देते हैं। तो तब बीच में और बहुत सारी घटनाएं आती हैं, नरोत्तम दास ठाकुर को राधा रानी सपने में आती हैं, उनको बताती हैं कि आप उनको भी सिद्ध रूप बताती हैं कि आप जो हैं वो एक चंपक लता सखी है और उनकी सेवा है कि वो भगवान के लिए रबड़ी बनाती है, तो आपको क्या करना है, उनको असिस्ट करना है, और आपका नाम चंपक मंजरी है, विलास मंजरी है, और आपको चंपक लता सखी की सेवा करके ये भगवान को ये भोग अर्पित करना है। और ऐसा नरोत्तम ठाकुर के जीवन में कई बार होता है कि वो जो है वो समाधि में ये लीला को देखते हैं, दूध गर्म करते हैं और गर्म दूध को जब छूते हैं उनके हाथ जल जाते हैं, और जब भारी दृष्टिकोण में भी आते हैं तब भी देखते हैं उनके हाथ जले हुए, तो वो अपने आप के अपने हाथों को छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि उनके हाथ जले हुए, लेकिन सभी वैष्णव पहचान जाते हैं। तो एक दिन ऐसे जीव गोस्वामी के पास आते हैं तो जीव गोस्वामी पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ क्यों जले हुए हैं, उनको बताते हैं कि जो है वो भगवान का दूध गर्म करते करते नित्य लीला में जो है वो दूध गर्म था, जब मैंने छुआ तो इतना गर्म था कि उनका हाथ जल गया, और फिर जो है वो तो जीव गोस्वामी भी देखकर उनको खूब प्रसन्न होते हैं और फिर उनको टाइटल देते हैं, और उनके साथ उनके दो शिष्य और होते हैं श्रीनिवास और श्यामानंद, और वो टाइटल दे देते हैं। नरोत्तम को क्या टाइटल देते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, और श्रीनिवास को क्या टाइटल देते हैं, आचार्य, और दुखी कृष्णदास को क्या टाइटल देते हैं, श्यामानंद का टाइटल देते हैं। और फिर उनका एक जो है जब उनकी शिक्षा पूरी होती है फिर उनको भेजते हैं किताबों के वितरण के लिए, और फिर हम श्रीनिवास आचार्य खासकर जीवन में हमने चर्चा की कैसे किताबें वो लेके जाते हैं और किताबें खो जाती हैं, वो एक लंबी घटना है, लेकिन उसमें होता यह है कि जब किताबें खो जाती हैं तो श्रीनिवास आचार्य कहते हैं कि मैं उस स्थान पर रहता हूँ किताबें ढूंढने के लिए, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रणु को आगे भेज देते हैं कि महाप्रभु का प्रचार नहीं रुके। तो आपने जो भी सीखा है, अगर किताबी नहीं भी हैं, लेकिन आपका एक काम है जो आपने सीखा है जीव गोस्वामी से और ग्रंथों से जो आपने सीखा है उसका प्रचार करें। तो नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद जो हैं वो उस स्थान से आगे निकलकर अपने गांव खेतरी में आ जाते हैं, और खेतरी में अपने फिर माँ बाप से मिलते हैं, और माँ बाप भी उनको देखकर जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन स्नेहवश जो है वो कुछ ना कुछ उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अब तो मैं जो है मैं जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है, तो वो उनको उनके उनके पिता और उनके जो चाचा थे उनको एक अलग स्थान देते हैं जहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद पंडित रहते हैं, और फिर वहाँ पर उनका प्रचार कार्य शुरू होता है, और नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ पर कई शिष्य बनाते हैं। ऐसे लिखा है भक्ति रत्नाकर में कि 123 शिष्य वहाँ नरोत्तम दास ठाकुर बनाते हैं, और श्यामानंद पंडित जो है वहाँ से उनको नरोत्तम दास ठाकुर भेज देते हैं उड़ीसा प्रचार करने के लिए, और नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ पर रहते हैं और कई लीला स्थलीय में दर्शन करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर जाते हैं महाप्रभु के घर जाते हैं तो उनको ईशान ठाकुर के दर्शन होते हैं, खरदा जाते हैं तो जानवा माता के दर्शन होते हैं, शिवास ठाकुर के घर जाते हैं तो उनके दो भाई उनके दर्शन होते हैं, शांतिपुर जाते हैं तो अद्वैत आचार्य के जो पुत्र होते हैं उनके दर्शन होते हैं। ऐसी लीलाओं का दर्शन करके जब वापस आते हैं तो अब उनको एक चिट्ठी मिलती है लोकनाथ दास गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी उनके गुरु से, और क्या चिट्ठी मिलती है कि उनकी इच्छा थी लोकनाथ गोस्वामी की जो है वो कि वहाँ पर खेतरी में वो विग्रहों की स्थापना करें, और जो है वहाँ पर जो है वो विग्रहों की जो सेवा की महिमा है उसका प्रचार करें। तो जब ये उनको आदेश प्राप्त होता है तो फिर वो निर्णय लेते हैं कि वो खेतरी में विग्रहों की स्थापना करेंगे, और जो जो तिथि वो चुनते हैं वो थी गौर पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा वो तिथि चुनते हैं, और गौर पूर्णिमा तिथि को बहुत धूमधाम से बनाने के लिए, पहले चैतन्य महाप्रभु की जन्म उत्सव को इतनी धूमधाम से मनाया नहीं जाता था, जन्माष्टमी मनाई जाती थी, भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव मनाया जाता था, बाकी उत्सव मनाए जाते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जो है उनके प्राकट्य को धूमधाम से मनाया जाता था। तो महाप्रभु की महिमा को स्थापित करने के लिए और उस उत्सव से प्रचार महाप्रभु के बारे में प्रचार करने के लिए भी वो गौर पूर्णिमा के उत्सव को तय करते हैं उस दिन विग्रहों की स्थापना करने के, और गौर पूर्णिमा का उत्सव बनाते हैं, और फिर हर जगह वृंदावन उड़ीसा बंगाल के हर क्षेत्र में जाकर वो वैष्णवों को आमंत्रित करते हैं गौर पूर्णिमा उत्सव खेतरी ग्राम में, और उनका उद्देश्य ना सिर्फ उत्सव बनाना होता है, विग्रहों की स्थापना करना होता है, उनका उद्देश्य जो है वास्तव रूप में जो गोस्वामियों का जो वो सीख के आए होते हैं जीव गोस्वामी से, और जो जानवा माता की इच्छा होती है, वास्तव में जब जानवा माता वृंदावन जाती हैं तो जीव गोस्वामी को बोलती हैं, क्योंकि उनको वैष्णवों के बीच में भी कई मतभेद दिखाई देते हैं, जैसे गौर पर में अवाद, कुछ लोग जो है सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते थे, चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते थे, कुछ चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते थे, कोई नित्यानंद प्रभु को भगवान मानते थे उसको निताई परमावाद बोलते थे, कोई अद्वैत आचार्य को भगवान मानते थे अद्वैत परमावाद, और ऐसे कई किस्म के जो है वो वैष्णविज्म में अलग अलग सिद्धांत थे। तो जानवा माता चाहती थी कि जो रूप और सनातन की शिक्षा है वो वास्तव रूप में सब वैष्णव को पता चले और सबके बीच में एक समन्वय हो, तो उन्होंने जीव गोस्वामी से प्रार्थना की थी, तभी जीव गोस्वामी जानवा माता के आदेश अनुसार उनको भेजते हैं कि वो ग्रंथों का वितरण करें, लेकिन ग्रंथ जो खो गए थे, तो इस उत्सव के बहाने वो सभी वैष्णव को एक स्थान में बुलाकर उनको जो रूप और सनातन की शिक्षा है वो उसका वो भक्तों को वैष्णव को जो है उस बारे में उनको सबको जो है शिक्षा देना चाहते थे। तो इस उत्सव का वो प्रयोग करते हैं, और कैसे प्रयोग करते हैं कि जब खेती ग्राम में हर कोने से वैष्णव को इकट्ठा करते हैं, और बहुत ऐसा लिखा है कि हजारों लाखों वैष्णव जो है वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। अब उनके एक कज़न होते हैं संतोष, अब उनके पिता तो रहते नहीं हैं, तो उनके जो कज़न हैं वो गृहस्थ आश्रम में होते हैं, उनके पास वो जो है सारी संपत्ति आती है, तो उनके मदद से वो खेतरी ग्राम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम की आयोजना करते हैं, बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं, भक्तों के लिए एक पूरा रहने के लिए एक भवन बनाते हैं, कीर्तन हॉल बनाते हैं, कीर्तन का भवन बनाते हैं, प्रसादम का भवन बनाते हैं, ताकि सब वैष्णव आए तो बहुत धूमधाम से जो है खेतरी में चैतन्य महाप्रभु का उत्सव बना सके, और सब वैष्णव वहाँ पर आते हैं, और किस तरीके से वो प्रचार करते हैं कि वो जो विग्रहों की स्थापना करते हैं, राधा और कृष्ण के विग्रहों के साथ साथ वो चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रियों के विग्रहों की स्थापना करते हैं। क्योंकि जो वृंदावन के भक्त थे वो राधा और कृष्ण को मानते थे, जो बंगाल के भक्त थे वो महाप्रभु विष्णु प्रियो को मानते थे, जो उड़ीसा के भक्त थे उन्होंने तो विष्णु प्रियो को भी देखा ही नहीं था, उन्होंने महाप्रभु को संन्यास के रूप में देखा था, तो सन्यासी के रूप में महाप्रभु को मानते थे। तो सबको एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए वो क्या करते हैं कि भगवान राधा और कृष्ण के विग्रहों के साथ साथ महाप्रभु विष्णु प्रियो के विग्रहों को स्थापित करते हैं। ये स्थापित करने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अभिन्न नहीं है और विष्णु प्रिया राधा रानी से अभिन्न नहीं। तो इस तरीके से वो चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रिया के विग्रहों की स्थापना करते हैं। और जो कीर्तन करते हैं वो कीर्तन इस तरीके से करते हैं कि जो है वो यही सिद्धांत उनकी कीर्तन में भी प्रदर्शित हो। तो जब कीर्तन करते हैं तो कैसे करते हैं कि हरिनाम कीर्तन से पहले गौड़ चंद्रिका गाते हैं। गौड़ चंद्रिका मतलब कुछ ऐसी स्तुतियां गाते हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु का गुणगान हो, और चैतन्य महाप्रभु के गुणगान से लोगों को इसी बात का दोबारा से जो है आभास हो कि चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण से अभिन्न है। तो गौड़ चंद्रिका गाते हैं और कीर्तन करते हैं, और आप सबने सुना होगा कि उनके उस कीर्तन में सभी महाप्रभु और उनके पार्षद प्रकट होते हैं जो कि कई साल पहले अप्रकट हो चुके थे। तो वहां पर जानवा माता होती है, जानवा माता के सामने कौन प्रकट होते हैं? नित्यानंद प्रभु। वहां पर जो है चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, वहां पर शिवाज ठाकुर प्रकट होते हैं, उन वहीं पर उनके भाई होते हैं। तो देखते हैं अपने शिवाज ठाकुर को देखते हैं, वहां अद्वैताचार्य के पुत्र होते हैं, वहां अद्वैताचार्य को देखते हैं, वहां पर गोस्वामी जीव गोस्वामी होते हैं तो वो रूप और सनातन गोस्वामी को देखते हैं। तो सभी पार्षदों को उस कीर्तन में देखते हैं, और ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि भक्तों का जो आनंद है उस क्षणों में उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। किस किस प्रेम से, किस भाव से वहाँ पर सब भक्त लोग उस कीर्तन में भाग लेते हैं, और फिर उस कीर्तन जो है सारी रात चलता है। और फिर उसके जानवा माता क्या करती हैं कि वो जैसी कीर्तन ख़त्म होता है वो वास्तव रूप में होली बनाती है एक तरीके से, वो रंग लेती हैं और विग्रहों को लगाती हैं, और उसके बाद सब भक्त लोग जो है पूरा उत्साह पूर्वक होली का कार्यक्रम करते हैं, एक दूसरों के ऊपर होली फेंकते, रंग फेंकते और एक उत्सव बनाते हैं। और फिर जानवा माता अगले दिन सभी वैष्णवों के लिए कुकिंग करती हैं और एक बहुत बड़ा फीस्ट होता है, सब वैष्णवों को खुद खिलाकर फिर आखिरी में प्रसाद लेती है। लेकिन आखिरी में जो मैं बताना चाहता था कि इस पूरे उत्सव में उनका एक उद्देश्य तो पूरा होता है कि सब वैष्णवों को रूप और सनातन की शिक्षाएं मिलती हैं, वहाँ पर कथाएं होती हैं जिसमें जो है वो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं को सब वैष्णवों के बीच में रखते हैं। लेकिन इससे एक और लाभ जो मिलता है वो ये होता है कि नरोत्तम दास ठाकुर ना सिर्फ वैष्णवों में, पूरे प्रांत में, पूरे नगर में जो है बहुत विख्यात हो जाते हैं, और इससे उनको मौका मिलता है प्रचार करने का। और जब वो इस बार इस मौके को का उपयोग करते हैं वैष्णव धर्म के प्रचार करने के लिए, और फिर जो है वो खूब प्रचार करते हैं, और बड़े बड़े राजा मंत्री और जो है वो ब्राह्मण, ऊंचे ऊंचे कुल के ब्राह्मण जो हैं वो नरोत्तम दास ठाकुर की शरण लेते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं। लेकिन इससे बहुत बड़ा विवाद हो जाता है कि कैसे नरोत्तम दास ठाकुर शूद्र होकर जो है वो ब्राह्मण को दीक्षा दे सकते थे। अभी भी हम देखते हैं गांव में जाते हैं तो ऐसे गांव में आज भी प्रथा है, 2018 में भी ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पर ब्राह्मण अलग रहते हैं शूद्र अलग रहते हैं। अगर शूद्र की परछाई भी ब्राह्मण पर पड़ जाए तो ब्राह्मण जो है वो उसको स्नान करना ज़रूरी है, वो एक स्थान में बैठ के खा भी नहीं सकते। तो सोचिए 500 साल पहले मतलब कितना जो परिस्थिति होगी, कितनी और स्ट्रिक्ट होगी, या मतलब कितना भेदभाव होता होगा। तो ये सोचना कि एक शूद्र जो है जिसकी परछाई में ब्राह्मण को स्नान करना पड़े वो अगर ब्राह्मण का गुरु बन जाए तो कितना बड़ा विरोध बन जाएगा। तो जो है ऐसे कई ब्राह्मण थे जो कि नरोत्तम दास ठाकुर का खूब विरोध करने लगे। यहाँ तक बात आ गई कि वो नरोत्तम दास ठाकुर को जान से मारना चाहते थे। एक बार ये ऐसी घटना है कि एक ब्राह्मण का पुत्र जो है वो दुर्गा पूजा का दिन आने वाला होता है, तो वो कुछ भैंस और बकरी ले जा रहा होता है चंडी को चढ़ाने के लिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज वहाँ से जा रहे होते, तो देखते हैं कि ब्राह्मण का पुत्र वहाँ से जा रहा है और उसके पास भैंस और बकरी है। तो उसको रोक के पूछते हैं कि और भैंस और बकरी कहाँ लेके जा रहे हैं। तो बताता है कि मेरे पिता ने कहा है कि अभी देवी पूजा होगी चंडी की पूजा होगी और चंडी को जो है ये पशु को का वध करके अर्पित किया जाएगा। वो ब्राह्मण कहता है नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर जब सुनते हैं उनको बहुत खराब लगता है, तो वो कुछ 2-4-10 मिनट ही उस ब्राह्मण को प्रचार करते हैं, ब्राह्मण के पुत्र को, और उसको बोलते हैं कि वास्तव रूप में ये शास्त्रों से विहीन बात है कि इस कलयुग में जो है वो पशु यज्ञ जो है वो वर्जित है। और बताते हैं वास्तव रूप में उस देवी के ईश तो कृष्ण है, तो अगर तुम कृष्ण की भक्ति करोगे तुम्हें सभी यज्ञ का फल मिल जाएगा। और कुछ 10 मिनट के प्रचार में ही उसको वो तिलक दे देते हैं, कंठी दे देते हैं, माला दे देते हैं, उसको भग बना देते हैं। प्योरिटी इज द फोर्स। लेकिन जब ब्राह्मण का पुत्र वापस आता है और वो जो चंडी का उपासक ब्राह्मण देखता है अपने पुत्र को कि उसके पास जब अलग तिलक है, देवी का ना तिलक होगी कृष्ण का तिलक है और तुलसी की कंठी और तुलसी की जप माला है, और जब उसको ये पता चलता है कि मेरे बेटे को भड़काने वाले नरोत्तम, तो वो आग बबूला हो जाता है। तो क्या करता है कि वहाँ के राजा के पास जाता है शिकायत लेकर और कहता है कि राजा देखो, शास्त्रों के बिल्कुल विपरीत बात है कि शूद्र तो जो है वो सामाजिक दृष्टिकोण में चरणों के समान बताए गए, ब्राह्मण सर के समान बताए गए, और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि जो चरण में रहने वाले हैं वो सर पर चढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि नरोत्तम दास ठाकुर को दंड देना है। तो राजा क्या कहता है, अपने जो है वो सिपाही को भेजता है नरोत्तम दास ठाकुर से इस प्रश्न का उत्तर मांगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो राजा भी जानते थे कि ये भी एक महान संत हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अगर वास्तव रूप में ऐसी बात है तो कृपा करके एक सभा में जो है हम इसकी चर्चा करते हैं, और अगर वो ब्राह्मण मुझे गलत साबित कर पाए तो मैं अपने को ठीक करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो राजा जब ये विनम्र पत्र देखते हैं तो समझ जाते हैं कि वास्तव रूप में शायद ठीक नरोत्तम दास ठाकुर है। तो उस वो तय हो जाता है और वो राजा वो ब्राह्मण जो है वो निकल पड़ते हैं शास्त्रार्थ करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर से। लेकिन ब्राह्मण क्या करता है, अपने साथ साथ जो है वहाँ का एक दिग्विजय पंडित होता है, उसका नाम भी रूप नारायण होता है, उसको साथ ले लेता है। रूप नारायण वो ब्राह्मण जो है वो आते हैं नरोत्तम दास ठाकुर से शास्त्रार्थ करने के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उनके दो शिष्य होते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के, होते हैं ब्राह्मण और बहुत विख्यात पंडित होते हैं, एक होते हैं गंगा नारायण चक्रवर्ती और एक रामचंद्र कविराज जी होते हैं। उनको लगता है कि यार ये ब्राह्मण और रूप नारायण इतने भी योगी नहीं कि हमारे गुरु से शास्त्रार्थ करें, तो हम ये खेत्रु में भी नहीं घुसने चाहिए, हमारे गुरु से शास्त्रार्थ तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या करते हैं, खेत्रु गांव के बिल्कुल बाहर दो जो हैं वो अपनी दुकान लगा लेते हैं, एक मटके की दुकान लगा लेते हैं और एक पान की दुकान लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कहीं भी आते थे, किसी स्थान में भी आते, सबसे पहले जो है वो स्नान करते थे, है ना, तो उनको लोटे की आवश्यकता होती थी, तो जो है वो मटके का लोटा खरीदना होता था, और ब्राह्मण अक्सर जो है वो भगवान को पान अर्पित खाते थे, तो पान की दुकान की जरूरत पड़ती। तो ये दुकानें जो हैं सोच समझ कर ये दो दुकानें जो हैं वो खोल देते हैं। तो वहाँ से वो राजा आते और ये ब्राह्मण आते और रूप नारायण आता है। जैसे ही वो राजा आते हैं तो वो ब्राह्मण जाते हैं मटका खरीदने के लिए, लो स्नान करने के लिए, और पान खरीदने के लिए जाते हैं। लेकिन पान खरीदने के लिए उसे भाव पूछते हैं तो संस्कृत में उत्तर देते हैं, तो बड़े हैरान हो जाते हैं कि मैंने तो भाव पूछा और ये जो है, मतलब ये शूद्र जाति का काम है ये मटके बनाना, और उनको लगा इनको तो वो इसी चीज़ को साबित करना चाहते थे, तो उनको बड़े दंग रह जाते हैं कि वो संस्कृत में जवाब दे रहे हैं, तो उनके बारे में पूछते हैं, तो पूछते तो वो बताते हैं कि हम वास्तव रूप में नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य हैं। जब ये सुनते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं, तो आगे जाने छोड़ देते हैं और सब ब्राह्मण और रूप नारायण उसी दो दुकानों के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं, वहीं शास्त्रार्थ शुरू हो जाता है, और वहीं वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो है वो तुम्हारे गुरु जो है वो ढोंगी हैं, तो शूद्र जाति के कायस्थ हैं, निकृष्ट जाति के हैं, वो ऊंचे कुल के ब्राह्मण को कैसी दीक्षा दे सकते हैं, उन्होंने मेरे बेटे को भी फंसा दिया। तो जब ऐसे वो शास्त्रार्थ करते हैं तो बड़ी आसानी से गंगा नारायण चक्रवर्ती, रामचंद्र कविराज, अलग अलग शास्त्रों से, भागवत पुराण से और अन्य पुराणों से, वेद शास्त्रों से, बड़े सरलता से जो है उस ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में हरा देते हैं। तो ब्राह्मण जो है वो बड़ा पानी पानी हो जाता है, लेकिन उसके लिए एक उम्मीद होती है कि मुझे तो तुम हरा सकते हो, रूप नारायण को हरा के दिखाओ। तुम रूप नारायण को आगे कर देते हैं, रूप नारायण का और गंगा नारायण चक्रवर्ती, रामचंद्र कविराज का शास्त्रार्थ होता है। लेकिन ऐसे फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं रामचंद्र कविराज और गंगा नारायण चक्रवर्ती के कि रूप नारायण भी अपनी हार मान लेता है। तो राजा पूछता है, राजा ब्राह्मण को रूप नारायण को देख के बोलता है, अरे कि अगर उनके शिष्य ऐसे हैं और तुम्हें शिष्य ने ही खेतरी ग्राम से पहले ही तुम्हें बाहर जो है शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया तो उनके गुरु कैसे होंगे? तो जो है हमें खेतरी ग्राम में नहीं जाना चाहिए, यहीं से लौट जाना चाहिए। तो यहाँ से जब वापस लौटते हैं तो रात को जो चंडी जो देवी हैं उस ब्राह्मण और राजा के सपने में आती और वो कहते हैं कि वास्तव रूप में वो कोई साधारण नहीं है, वो मेरे भी पूज्य हैं, तो तुम सब जाओ और उनसे दीक्षा लो। तो वो ब्राह्मण रूप नारायण और वो राजा फिर नरोत्तम दास ठाकुर के पास जाते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। तो ऐसे फिर आगे बहुत सारी कथा है और भी, तो इस तरीके से और भी आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, ऐसे कई ग्रंथ हैं, प्रेम विलास, भक्ति रत्नाकर, नरोत्तम विलास, और एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं सत्यराज, जिन्होंने एक किताब लिखी द लाइफ ऑफ वैष्णव सेंट्स। तो ऐसे पढ़ के आज हम सब नरोत्तम दास ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि आज उनका कृपा मात्र का एकमात्र भी अंश अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हम भी भगवान के और गुरु गौरांग के कुछ सच्चे भक्त बन पाए। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर अवभावतिथि महामहोत्सव खे, जगत गुरु शिल प्रभुपाद खे, समवेद भक्त वृंद खे, निथाय गौर फेमनंदे, हरे कृष्णा।